नमाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तादिशतारिणे श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण. So, हम कहां तक चर्चा किया था? गोवर्धन. गोवर्धन लीला के द्वारा श्री कृष्ण इंद्र का घमंड खंडन किया था. इंद्र का बहुत दंभ हुआ था. वो बहुत दाम्भिक बन गया कि मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं. बल्कि श्री कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि मेरे कारण ही तुम्हारा जो प्रभाव और तुम्हारा जो ऐश्वर्य, तुम्हारा जो शक्ति या तेज, ये सब मेरे कारण ही है. भगवान ही कोई किसी को बड़े आसन देते हैं, मतलब प्रतिष्ठा और जो क्षमता जो मिलता है वो सब भगवान का कृपा से ही मिलता है. कभी नहीं सोचना कि ये मेरे कारण ये हुआ है, मैं बड़ा हूं, मैं शक्तिमान हूं. शक्तिमान केवल भगवान है और हम सब भगवान के शक्ति से ही, भगवान के कृपा से ही हमारा थोड़ा कुछ ये हो रहा है. ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में लीला विलास कर रहे थे और कंस कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद असुर भेज रहा था. ऐसा एक असुर था अरिष्ठासुर. अरिष्ठासुर एक बैल के रूप में आया और आकर एक विशाल बैल के रूप में आकर वृंदावन में आया. ब्रजवासियों ने अरिष्ठासुर को देखकर बहुत भयभीत हो गए और तब श्री कृष्ण ने बोला डरने का कोई कारण नहीं. जब ही ब्रजवासी का मनोभाव ऐसा था कि जब ही कुछ शंका होता था, मुश्किल होता था, तो वो श्री कृष्ण का शरण लेते थे. श्री कृष्ण रक्षा करो. तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को आश्वासन देते थे डरने का कोई कारण नहीं है. और श्री कृष्ण तब ये अरिष्ठासुर का सामने जाकर खड़ा हो गया और एक बालक के रूप में भगवान लीला विलास कर रहे हैं. तो भगवान जो अपना चादर जो है वो कस के कमर में बांध लिया, तैयार हो गया, ठीक है अरिष्टसु तुम आओ। और एक विशाल बैल के रूप में आकर, सार के रूप में, क्या बोलते हैं,
सार
के रूप में आकर अरिष्टसु ने तब कृष्ण के साथ मुकाबला करने को आया। और तब श्री कृष्ण ने अरिष्टसु का ये पकड़ लिया, सिंह पकड़ लिया, और सिंह पकड़ के कृष्ण ने उसको घुमा के मिट्टी में, सिंह पकड़कर वैसे घुमा के मिट्टी में। अच्छा, तब अरिष्टसु का प्राणांत हो गया। अरिष्टसु के मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण गोपिया को मिलने को गया। तब राधा रानी बोला, कृष्ण तुम गो हत्या किए हो, तो ये गो हत्या के कारण तुम्हारा जो पाप हुआ है तो हम तो तुमसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तो हमें मत छूना, छूना मत। और तुम जाके, तो कृष्ण तब बोला, तो मैं तब क्या करूं, वो बोला सारे जो पवित्र तीर्थ हैं वहां जाके तुमको नहाना होगा, तब ये गोहत्या रूप जो पाप है इस पाप का खंडन होगा। कृष्ण बोला ठीक है। तब कृष्ण अपना पैर से जमीन पर एक ये पदचालन किया, he kicked it, what is the पैर ओके पैर के ठोका, और पैर ठोकने से वहां एक कुंड बन गया, और वो कुंड तत्क्षणात ही पानी से भर गया। और श्री कृष्ण सब देखा कि सारे मूर्तिमान रूप में सारे तीर्थ वहां आकर कृष्ण का वंदना कर रहा है। तो ये देखकर गोपियां ने सोचने लगा, ये तो कृष्ण तो बहुत एक आश्चर्य कार्य किया है, तो हमको भी इसके बराबर कुछ करना चाहिए। तो सब अपना हाथ का जो कंगन है वो निकल के वहां ही जमीन खोदने लगा, और वहां एक विशाल कुंड बन गया। और राधा रानी का हृदय का प्रेम से वो कुंड भर गया। राधा रानी का द्रवीभूत प्रेम, कृष्ण के प्रति राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम पानी के रूप में वो कुंड को भर दिया। तो वैसे श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण हुआ, रचना हुआ, और यह प्रकाश हुआ, श्याम कुंड और राधा कुंड का प्रकाश हुआ। अरिष्टासुर के मृत्यु के बाद कुछ दिन, एक साल तक कंस ने कुछ किसी को नहीं भेजा। कंस ने सोचा कि ये जो लड़का जो है ये तो एक के बाद एक असुरों को मार रहा है, तो हम इसके साथ मुकाबला करना हमारे लिए संभव नहीं है। सोचने लगा क्या करूं, और ये सोचते हुए कंस का रात को नींद टूट गया और भोजन का रुचि भी नष्ट हो गया। और अगर कोई खा नहीं सकता है और सो नहीं सकता है तो उसका हाल कैसा होता है? वो उसका तबीयत बिल्कुल क्या होता है?
बिगड़ जाता
है। बहुत अच्छा। उसका तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो कंस का हाल ये एकदम उसका आंखों में काला पड़ गया और शरीर एकदम निस्तेज हो गया, शक्ति नहीं रहा, वो बहुत ही खराब हाल हो गया कंस का। दिन भर वो सोचते लगा। तो भौतिकवादी आदमी जो है उसका असुरों का हाल कैसा होता है? जब उसका मनकामना पूर्ण नहीं होता है तो उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है, उसका मन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो ये देखकर कंस का एक मित्र केशी ने, जिसका नाम था केशी ने आकर कंस को एक दिन बोला, कंस तुम्हारा हाल इतना खराब क्यों हो गया है? तो कंस बोला, देखो मेरा ये एक शत्रु का जन्म हुआ है जो लगता है तो एक बच्चा है, बल्कि वो बड़े बड़े असुरों को ये संहार कर दिया, तो इसके साथ मुकाबला करना संभव नहीं हो रहा है। तब केशी ने बोला, ठीक है कंस, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसका हिंदी क्या होगा? कोई परिभाषा है इसका? अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड।
जो मुसीबत में दोस्त होता है वही वास्तव में असली दोस्त
है। अच्छा ठीक है। मुसीबत का दोस्ती ही सही दोस्ती है। जो मुसीबत में जो सहयोग देता है। तो ये क्या बाहर कुछ? अच्छा थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ लोग शायद बाहर में खड़े
हैं।
ओह आई सी, सो आस्क देम टू कम इन। या अंदर आने लो, गिव। रत्न राधिका, कैन यू अंडरस्टैंड? ओके ओके। तो ऐसे कम Jamanapriya, you can translate to Mother Guru Bhakti. तब केशी बताया कंस को, देखो कंस मैं उसको संभालूंगा, ये एक बच्चा है, इसके इससे डरने का क्या कारण है? मैं जाके उसको खत्म कर दूंगा। कंस बोला, देखो एक ही बार एक बहुत सारे बड़े बड़े असुरों ने जाकर वो अपना पप्राण त्याग दिया उसके पास। तो केशी बोला, ठीक है वो लोग गया, बल्कि केशी इज केशी। केशी उसको संभाल लेगा, हो सकता है उसका प्राणांत हो गया है वो सबका, मुझे पता है अघासुर बकासुर अरिष्टासुर ये सब बड़े बड़े पहलवान थे, बल्कि केशी के बराबर कोई नहीं है। तो भौतिक आदमी का विचार ऐसा होता है, वो सोचता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बलवान हूं, मैं ही सारे संसार के नायक हूं, मालिक हूं। तो ये सोचकर ऐसे मनोभाव लेके वो लोग अपना जीवन बिताते हैं और भगवान को पहचान नहीं है। भगवान का शक्ति के बारे में उसका कोई भी पता नहीं रहता है। तो ये है भौतिक आदमी का। ये कृष्ण लीला के माध्यम हम क्या देख रहे हैं, भौतिकवादी जो है व्यक्ति, उन लोगों का मनोभाव कैसा होता है। जब भौतिक मनोभाव एकदम चरम सीमा में जाता है तो वो लोग असुर बन जाते हैं। ऐसे नहीं तो हर व्यक्ति ही एक छोटे छोटे असुर है। सब साधारणतः क्या सोचते हैं, भगवान नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, भगवान कौन है। और अगर कोई भगवान है तो मैं, क्लास में इंद्रदुम्न महाराज जो कह रहे थे उस दिन, एक हिप्पी जाके प्रभुपाद को बोला, कृष्ण भगवान नहीं, मैं भगवान हूं। तो साधारणतया असुरों का ऐसा ही मनोभाव होता है, मैं भगवान हूं, कृष्ण क्यों भगवान होगा। और आजकल हम देखते हैं ना, कितने सारे भगवान निकल रहा है, सब बोलते हैं मैं भगवान हूं, भगवान ये, भगवान ओ, भगवान कितने सारे भगवान बन रहा है। तो असल में हम देखते हैं वो अगर भगवान नहीं है परंतु भगवान कह रहे हैं अपने आप को, इसका मतलब क्या है, असल में वो असुर है। लोग नहीं बोलता है, बोलने के डरता है कि, बल्कि असल में वो लोग असुर है। तो ऐसे ही केशी ऐसे बहुत अपने को बहुत प्रशंसा करते हुए वो भगवान को साथ मुकाबला करने गया। वो भी एक घोड़ा का रूप ले लिया और वो घोड़ा इतना बड़ा था कि लगता था कि वो उसका सिर आकाश तक है। और वो जब चल रहा था तब लग रहा था कि भूकंप हो रहा है, जो उसका पैर जब जमीन पर गिरता था तो लगता था कि ये भूकंप हो रहा है। और उसको जो श्वास ले रहा था वो श्वास से आग निकल रहा था, और केवल श्वास से ही नहीं, उसके आंखों से भी क्रोधवश आग निकल रहा। तो ऐसे केशी आया और सब भक्त लोग, मतलब ब्रजवासियों ने, ग्वालवाल सब कृष्ण के पास जाकर क्या बोला, कृष्ण जोर से बोलो, कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण रक्षा मांग। तब देखो ये असुर आए, ये कौन आया है, ये लग रहा है कि हम सबको गिलने के लिए आया है। तब कृष्ण सब बच्चे को बोला, पीछे खड़ा हो जाओ, मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा। ऐसे कृष्ण ने आश्वासन दिया। और तब कृष्ण क्या किया, वो चादर लेकर जो उत्तरीय था उसको लेकर कसके कमर में बांधा और ऐसे खड़ा हो गए। ठीक है, तो वैसे खड़ा हो गए और बच्चे लोग सब देखने लगा। तो ये देखो देखो कैसे सुंदर
लग रहा है कृष्ण को, और ये असुर हम देखेंगे अब वो क्या करेगा कृष्ण को। तो असुर आकर तब कृष्ण को गिलने को प्रयास किया, तब कृष्ण अपना बाया हाथ वो असुर का मुंह में डाल दिया, दाहिना भी नहीं बाया हाथ ऐसे डाला, और कृष्ण का हाथ इतना बड़ा हो गया, यद्यपि असुर इतना बड़ा था बल्कि कृष्ण का हाथ उससे भी बड़ा होकर उसके गले में अटक गया। तो बहुत कष्ट से अपने आप को छुटाया, तो उसके फिर वो कृष्ण को जब गिलने आया तो कृष्ण उसको पीछे का दो पैर पकड़कर वैसे सिर के ऊपर घुमाने लगा, घुमाते 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 उसका प्राण निकल गया उसके शरीर से, और तब कृष्ण उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो क्या हुआ, केशी का शरीर एकदम वृंदावन से सीधा जाकर मथुरा में कंस के सामने गिर पड़ा। अचानक कंस देखा कुछ आकाश से कुछ गिरा तो उसको पता नहीं चले ये क्या है, और इस समय केशी का शरीर एक मांस का पिंड बन गया था, कुछ उसका मुंह नाक कान कुछ भी नहीं था, सब एकाकार हो गया था। तो थोड़ा समय के बाद केशी का ऐसा, कंस का ऐसा लगा कि शायद ये केशी होगा, तो जब कंस का ऐसा लगा कि ये, और तब जब देखा इसका मृत्यु हो गया, ये केशी का ऐसा हाल हुआ, तो डर के मारे कांपने लगा, उसका रोम खड़ा हो गया, रोमांचित हो गया सारा शरीर डर के मारे। और वहां वसुदेव भी था, तो वसुदेव तब कंस को बोल, वसुदेव हंसने लगा, मतलब हंसा नहीं मुस्काने लगा, जो स्लाइट स्माइल क्या बोलते हैं, मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने लगा, मतलब वो हंसी को छिपाने का कोशिश किया, बल्कि छिपाना नहीं सका, कंस देख लिया। तब कंस बोला ये मेरा शत्रु है, देखो मेरे यहां रहकर ये मेरा जो मेरा कठिनाई देखकर इसका आनंद होता है। तब कंस बोला ये मेरा शत्रु है, इसको मैं अब मार डालूंगा, ये कहकर कृष्ण कंस ने अपना तलवार निकाल दिया और वसुदेव को मारने का तय किया। तब वहां नारद मुनि ने आ गया, तब नारद मुनि आके बोला कंस देखो वसुदेव को मार के फायदा क्या होगा, तुम्हारा शत्रु तो कृष्ण है और बलराम है, ये कृष्ण और बलराम जो है असल में वसुदेव का पुत्र है, तुमको तो पता है, मैं बताया था पहले तुमको, तो ये वसुदेव का पुत्र है, उसको मारने का कोशिश करो, कृष्ण बलराम को मारने का कोशिश करो, वसुदेव को मार के फायदा क्या होगा, परंतु वसुदेव का अगर तुम हत्या करोगे तो ये कृष्ण बहुत ही क्रोधित हो जाएगा और तुम ना जाने तुमको क्या कर देगा। तब वसुदेव बोला ठीक है, तो मैं कंस बोला इसको कारागार में डाल दो वसुदेव, उस कारण वसुदेव का फिर से कारागार में फेंका गया था। और तब कंस ने नारद मुनि को पूछा मैं क्या करूं, ये जो मेरा शत्रु है इसको मैं कैसे मारूं, इसके साथ मैं कैसे मुकाबला करूं। नारद मुनि क्या करते हैं, कृष्ण को लीला और से उत्कृष्ट करने के लिए नारद मुनि ने आकर ऐसे कंस को बताते थे। ताकि जल्दी जल्दी कृष्ण कंस को खत्म कर दे, हत्या कर दे। तब कृष्ण नारद मुनि ने बताया, देखो कंस, तुम्हारा गलती ये हुआ कि तुम्हारा जो मित्र था सब असुरों को एक के बाद एक भेजा था। जब शत्रु जब इतना बलशाली होता है तो शत्रु के साथ एक एक करके मुकाबला नहीं करना चाहिए, इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो कंस बोला, मैं कैसे क्या करूं, मेरा सारे मित्र लोग तो सब खत्म हो गए बड़े बड़े असुर का प्राणांत हो गया, तो मैं अब क्या करूं। कंस ने बोला, नारद मुनि कंस को बोला कि जो सारे राजाओं हैं तुम्हारा मित्र है उन सबको बुलाओ। तो कंस बोला, मैं कैसे बुलाऊं, मेरा इतना यश है कि मैं भगवान हूं, महावीर हूं, तो मैं अगर बोलूंगा कि एक बच्चा से मैं डरता हूं और उस बच्चा के साथ मुकाबला करने के लिए तुम लोग आके हमें मदद दो, तो ये इससे तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। तब नारद मुनि बोला, ऐसा करो, तुम्हारे पास जो शिव जी का जो धनुष है तुम उसका एक यज्ञ करो और ऐसे घोषित करो कि जो अगर कोई शिव जी का ये धनुष में शिला लगाना सकेगा तो उसको तुम्हारा आधा राज्य दे देगा। चलो ये अपना शत्रु को साथ मुकाबला करने के लिए तुम आधा राज्य दे दो उसको बल्कि ऐसे उसको सबको उन सबको बुलाओ और कृष्ण बलराम को भी तुम बुलाओ। तब वहां जब तुम्हारे सारे शक्ति इकट्ठा हो जाएगा ऐसे, तब कृष्ण को यहां बुलाकर तुम कृष्ण के साथ मुकाबला करो। तो वैसा ही कंस किया और कंस कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर को भेजा। अक्रूर बहुत साधु व्यक्ति थे, सात्विक व्यक्ति थे। तो यद्यपि अक्रूर ये नहीं चाहता कि कृष्ण का कुछ नुकसान हो, बल्कि कृष्ण का दर्शन मिलेगा ये सोचकर अक्रूर ये कार्य संपादन करने के लिए तैयार हो गए। तो अक्रूर ने गया वृंदावन। जब अक्रूर वहां जा रहा था, अक्रूर कृष्ण के बारे में सोच रहा था, आज परमेश्वर भगवान के साथ मेरा भगवान का दर्शन मिलेगा और जब मैं भगवान को दर्शन करूंगा तो मेरा इतना आनंद होगा और उस आनंद के मारे जब हम अपने आप को भगवान के पास प्रणाम करूंगा दंडवत करके, तो भगवान श्री कृष्ण जरूर हमारा सर पर हाथ रखेंगे और शायद अपने गले भी लगा लेंगे। तो ये सोचते हुए अक्रूर वृंदावन जा रहा था। तो वृंदावन में जब पहुंचा तो वैसा ही हुआ जैसा सोचा था, वैसा ही हुआ कि जब देखा कृष्ण ने अक्रूर को देखा और अक्रूर भगवान को जब दर्शन मिला, भगवान को प्रणाम किया और वैसे ही भगवान उसके सर पर हाथ रखा, उसको गले लगाया और बलराम ने अक्रूर को हाथ पकड़कर घर में ले गया और वहां बहुत अप्यायन किया। नंद महाराज अक्रूर को बहुत सुंदर भाव से निमंत्रण किया अपना घर में। तो उसके बल्कि जब ये खबर सबको मिला कि अक्रूर कंस के पास कृष्ण को लेने के लिए मथुरा लेने के लिए अक्रूर आया है तो ब्रज गोपिया ने बहुत ही विमर्श हो गए, बहुत ही दुखी बन गए कि जो ब्रज गोपिया ने एक पल के लिए भी कृष्ण का विरह नहीं सहन कर सकती थी। जब ये संवाद मिला कि कृष्ण अब मथुरा जाएंगे तब वो बहुत ही दुखी बन गए और उन्होंने बोलने लगे कि मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगा। ये अक्रूर मतलब जो क्रूर नहीं है बल्कि ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। कृष्ण को लेने के लिए हमसे यहां से आए हैं तो ये सोचकर गोपिया ने बहुत ही दुख प्रकाश करने लगे। और नंद महाराज सबको बोला ब्रज गोप को कि तुम सब अपना घर में जो ये है घी मक्खन मिठाई वगैरह जो है सब लेके एक बैलगाड़ी में उसको लेके चलो, हम सब कल सुबह कंस के पास जाएंगे। और ये सोचकर ये निर्देश मिलने से सब अपना जो सामग्री था घर में सब इकट्ठा करके कंस के पास कंस को भेंट देने के लिए सब मथुरा की ओर चले। और अक्रूर भी कृष्ण बलराम को लेकर रथ में लेकर मथुरा की ओर चले। तो जब मथुरा के बीच जब यमुना के किनारे आए हैं तो वहां कृष्ण बलराम अक्रूर अपना रथ रोका और यमुना में नहाने को गया। जब अक्रूर यमुना में नहाने को गया तब देखा कि कृष्ण बलराम भी यमुना में नारायण के रूप में विराज कर रहे हैं और कंस ये अक्रूर को वहां वैकुंठ दर्शन हुआ तो आश्चर्य हो गया। कृष्ण बलराम तो रथ में बैठा था, यहां कैसे आ गया? तो फिर अक्रूर ने रथ की ओर वहां जाके देखा कि कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं और जब यहां आया तो देखा कृष्ण नारायण के रूप में विराज कर रहे हैं और शेष नाग के रूप में अनंत शेष के रूप में बलराम विराज कर रहे हैं। उसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो ऐसे अक्रूर को वैकुंठ दर्शन हुआ और फिर ऐसे अक्रूर को पता चला कि कृष्ण बलराम बहुत कृपा करके उनको अपना दिव्य रूप प्रदर्शन किए हैं। तो इसके बाद अक्रूर रथ चलाकर मथुरा में आया। नंद महाराज और ब्रजवासियों ने ऑलरेडी का हिंदी क्या है? पहले से। नंद महाराज और बाकी सब ब्रजवासियों ने पहले से ही मथुरा पहुंच गए थे और वे शहर के बाहर, क्योंकि वो गांव वाले हैं तो इसलिए शहर में नहीं रहा, शहर के बाहर, क्योंकि गाय वगैरह था उनके साथ तो शहर के बाहर वन में ही अपना रहने का बंदोबस्त किया। कृष्ण बलराम वहां पहुंचा तो उन सबके मिलने के बाद कृष्ण बलराम बोला कि हम सब ये शहर दर्शन के लिए जा रहा हूं, ये मथुरा नगरी हम देखने जाऊंगा। तो कृष्ण और बलराम मथुरा में गए मथुरा दर्शन करने के लिए। उसके बाद कृष्ण बलराम रात को वहां ही आ गया। तो मथुरा नगरी का बहुत सुंदर वर्णन यह हुआ है। सुबह इसके बाद कृष्ण बलराम फिर से जब शहर में गया तब देखा कि एक धोबी कपड़ा लेके जा रहा है। तो कृष्ण ने बोला, धोबी तुम जो कपड़ा जो है ये कुछ कपड़ा हमको दे दो, क्योंकि हम राजा से मिलने को जा रहा हूँ। तो राजा को जब मिलने को जा रहा हूँ तो सही वेश होना चाहिए, हम तो ऐसे गांव वाले हैं। बल्कि जब क्योंकि हम राजा को दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सही कपड़ा पहन के जाना है। तो धोबी बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, बोला ये भेष राजा महाराज कंस का है, इसको ये उनके लिए है, तू कौन है गांव वाले राजा का कपड़ा पहनना चाहता है। तो ऐसे वो भेष देने का इनकार कर दिया। और कृष्ण को जब ऐसे डांटने लगा तो कृष्ण एक हाथ से उसको ऐसे थप्पड़ मारा। और तब उसका सर उसका शरीर से अलग हो गया, ये धोबी का मृत्यु हो गया। तब वो जो कपड़ा का जो बोझ था वो खोल के सब चुन चुन के कपड़ा पहना और ग्वाल बाल को सब कपड़ा दिया, बोलो तुम लोग भी ये पढ़ो पहनो। और तब सब वो कपड़ा पहन के बहुत मस्ती होकर शहर की ओर चलने लगे। तो कुछ समय जाने के बाद देखा कि एक मालाकार जिसका नाम था सुदामा, कृष्ण को देखते ही वो बोला, आ जाओ कृष्ण बलराम, तुम्हारे बारे में कितने मैं सुना हूं। और बहुत सुंदर माला वो कृष्ण को दिया, बलराम को दिया और ग्वाल बाल को भी दिया। कृष्ण इतना प्रसन्न हो गया कि ये इस जो तुम माला दिए इस कारण भगवत धाम में तुम्हारा स्थान मिल गया है। देखो भगवान कितना आभारी रहते हैं, अगर थोड़ा कुछ हम भगवान को देते हैं तो इसके भगवान इसके प्रतिदान के रूप में हमें भगवत धाम में ले जाते हैं। तो इसके बाद कृष्ण ने देखा एक कुब्जा, कुब्जा का हिंदी क्या है, कुमड़ी, कुमड़ी। अच्छा एक कुमड़ी एक कुबड़ी जा रही है, तो वो चंदन लेकर जा रहा है, तो राजा को लिए राजा के लिए चंदन पीस के ले जाता था जा रही थी। तो कुबड़ी कृष्ण को देखकर, तब कृष्ण उसको बोला ये सुंदरी तुम कहां जा रही थी, तुम्हारे पास जो चंदन है और सुगंध है वो भी थोड़ा हमको दे दो। तो और ये कुबड़ी भी कृष्ण को देखकर इतना मोहित हो गया, बोला केवल चंदन क्यों, मैं आपके लिए सब कुछ देने के लिए, मैं अपने आप को भी आपके पास समर्पण करना चाहता हूं। तब अपना जो वाणी उसको सफल सार्थक करने के लिए कृष्ण क्या किया, यद्यपि वो कुबड़ी थी कृष्ण ने उसका पैर के ऊपर अपना पैर रखा और हाथ उसका चिन थोड़ी के नीचे रख के ऐसे खींचा, वो लंबा हो गया। और केवल कुबड़ी से स्वाभाविक रूप ही प्राप्त नहीं, एक अपरूप सुंदरी के रूप में वो प्रकाश हुआ। तो इसके बाद कृष्ण ने जब कंस के प्रासाद का सिंह द्वार पर आया तब वहां देखा एक विशाल हस्ती हाथी खड़ा हुआ है द्वार रोककर। तो कृष्ण बोला ये माहुत, माहुत बोलते हैं जो जो हाथी को जो महावल महावत ओके ओके महावत ये जो महावत ये महावत ये हाथी को यहां से हटा, ये मेरा मार्ग रोक रहा है। तो वो बोला नहीं हम हटेंगे नहीं, परंतु वो कृष्ण को आक्रमण करने को गया हाथी के द्वारा। वो हाथी कौन था? कुबलाया पीड़ा, वो भी एक असुर था जो सांप भाव प्राप्त होकर एक हाथी के रूप में आया। ऐसा उस एक हाथी में हजारों हाथी का शक्ति था, इतना शक्तिशाली था कुबलाया पीड़ा। तो कंस ने सोचा कि उस हाथी के द्वारा कृष्ण को हत्या करेंगे, बल्कि कृष्ण ने क्या किया, वो हाथी जब आया, हाथी आकर कृष्ण को जब चार्ज किया, मतलब उसका दांत के द्वारा आघात करने को,
कृष्ण पर धावा बोला,
धावा बोला कृष्ण को बोला, जब धावा बोला तब कृष्ण ऐसे वो आया और कृष्ण ऐसे शिफ्ट एक साइड में चला गया और हाथी आके जमीन पर उसका दांत, बहुत चोट लगा उसको। तो फिर से वो उठ के कृष्ण के प्रति धावित हुआ, तब इस बार क्या किया कृष्ण, वो हाथी का पेट के नीचे चला गया, पर हाथी उसको ढूंढने लगा कहां गया। तब कृष्ण सामने से निकला, कभी सामने कभी पीछे, और ऐसे हाथी कृष्ण के और भागते हुए ऐसे दौड़ने लगा। अंत में श्री कृष्ण हाथी का एक दांत पकड़कर ऐसा खींचा कि हाथी का सारा शरीर ऐसे क्या हुआ, उल्टा हो गया, उल्टा होकर गिर पड़ा। तब कृष्ण ने उस हाथी का दांत निकालकर उसको उसके द्वारा मारने लगा और हाथी का प्राणांत हो गया। तब कृष्ण ने जाकर, अच्छा रात को जब कृष्ण ने गया था तो वो यज्ञ स्थली में जाकर कृष्ण ने धनुष को भांग तोड़ दिया था। अच्छा इस बार कंस को पता चला कि ये लड़का ऐसा किया है, तो अब रंगमंच में आया जहां लड़ाई होने वाला था। कंस कृष्ण और बलराम के साथ लड़ाई होने वाला था चाणूर और मुष्टिक। कृष्ण बलराम दो 12 साल के बच्चा, और चाणूर और मुष्टिक एक विशाल, उसका शरीर एक पर्वत जैसा विशाल था और उसका शरीर वज्र की तरह कठिन था। तो सब लोग बोलने लगा कि ये कैसा लड़ाई होगा, कुश्ती तो समान के साथ होता, बराबर के साथ होता है, बल्कि ये कैसे, ये तो असमान है, ये लड़ाई सही नहीं। और सब बोलने लगा ये कंस इतना पापी है, इतना अन्याय कर रहा है ये। और कृष्ण भी चाणूर और मुष्टिक को बोला ये कैसा, आप लोग हमारे साथ कैसे लड़ाई करेंगे, आप लोग इतने बड़े हैं हम इतने छोटे हैं। तब चाणूर बोला ऐसा लगता है कि आप छोटा हैं, बल्कि आप तो न तो बच्चे हैं न तो जवान हैं, आपको पता नहीं आप कौन हैं, क्योंकि आप जैसे कार्य किए हैं, बड़े बड़े असुरों को आप मार डाले हैं, कुछ समय पहले भी आप उकुवलाय पीर जिसके साथ मुकाबला करने का कोई साहस नहीं कोई करता है उसको भी आप खत्म कर दिया। तो तब कृष्ण बोला ठीक है चलो लड़ाई कर शुरू कर। तो कुछ समय ऐसे लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के पश्चात कृष्ण के साथ चाणूर का और बलराम का साथ मुष्टिक का लड़ाई हो रहा था। दोनों को कृष्ण बलराम ने संहार किया। संहार करने के पश्चात और बाकी सब जो असुर हैं शल तोशल आदि बड़े बड़े पहलवान सब उसको आया कृष्ण बलराम के साथ लड़ाई करने के लिए कृष्ण बलराम को मारने के लिए बल्कि कृष्ण बलराम एक एक करके सबको खत्म कर दिया। तब कंस ने वहां खड़ा होकर चिल्लाने लगा इसको मार डालो इसको मार डालो। और साथ साथ उग्रसेन को मार डालो वो मेरा राज लेने को चाहता है वसुदेव को मार डालो ऐसे चिल्लाने लगा। तब कृष्ण क्या किया वहां से मंच पर जहां कंस बैठा था वहां आकर कंस को एक चपेटा घात किया। और तब कंस का जो मुकुट था वो गिर गया और क्षत्रिय लोग बड़े बड़े जैसे सरदार लोग रखते हैं ना बाल लंबे बाल रखते हैं तो क्षत्रिय में बाल रखते हैं ऐसे तो उसको बाल पकड़ा और खींच के रंगमंच में लाया। वहां आकर कृष्ण ने एक कंस को मार डाला तो ऐसे कंस का संहार हुआ। इसके पश्चात कृष्ण कारागार में जाकर उग्रसेन को मुक्त कर दिया वसुदेव और देवकी को भी मुक्त कर दिया सब जिसको कंस ने कारागार में कैदी बना के रखा था अपने रिश्तेदार सब उन सबको निकालकर उग्रसेन को राजा बनाया। ऐसे एक अध्याय का भागवतम में कृष्ण का वृंदावन लीला का वर्णन ऐसे समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। हिंदी में मेरे बोलने में कुछ असुविधा होता है आपको समझने में असुविधा तो नहीं हो रहा है। वर्ड्स समटाइम्स द वर्ड्स बिकम लिटिल डिफिकल्ट। कोई प्रश्न है किसी को जमुना प्रिय Maybe I can read from. Yeah, because these descriptions are so beautiful. जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई, वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मित हो गया है। उनकी दशा वैसी ही थी जैसे उस प्राणी को होता है जिसका अंत समय आ गया हो और वो तत्काल इस जगत को छोड़ रहा है। अन्य गोपियां श्री कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में आंसू भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हे देव, तुम कितना क्रूर हो! ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही ये योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। ये ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण को दर्शनों का आयोजन कराते हो, उनकी काली कुंचित केश राशि, उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नाशिका को और भी सुंदर बनाती है तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्काते रहते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितना क्रूर हो! किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो ये है कि तुम अब इस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो क्रूर न हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सहारा न करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यह दर्शन न कर सके। नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है, उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखता भी नहीं। अब मथुरा के युवतियों के सुअवसर मिलेगा, वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्काना से युक्त उनके मुख का दर्शन करेगी, वो इसका मधुपान करेगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय हैं, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियां का सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे, अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे यस धनश्री। कौन बोला?
नारद
मुनि, ताकि कृष्ण का कृष्ण जल्दी जल्दी कंस को खत्म कर दे, है ना, कि कंस कृष्ण को मारने का कोशिश करेगा, बल्कि कृष्ण को कोई मार सकता है? बल्कि अंत में क्या होगा, कृष्ण ने कंस को खत्म कर देगा। तो देवताओं ने चाहता था कि कंस को संहार जल्दी जल्दी हो जाए, तो वो लोगों ने नारद मुनि को भेजे थे, आप जाके कंस को ऐसे बताना। तब क्या हुआ, कंस कृष्ण को बुलाया मारने के लिए, बल्कि अंत में क्या हुआ, तो नारद मुनि कृष्ण लीला को लीला का ऐसे सहयोग दे रहे थे। मनीष, कोई प्रश्न है तुम्हें?
प्रोसेस ये आता है कि हियरिंग फ्रॉम साधु चेंजिंग अवर हार्ट एंड लाइक साधु ऑलवेज लाइक क्रश्ड एनवीनेस इन वॉट एवर इन अवर हार्ट सो व्हेन कंस इज हियरिंग फ्रॉम नारद मुनि एंड इवन लाइक इन दैट डिस्क्रिप्शन इट्स लुक लाइक कि वो एडवाइस ले रहे थे उनसे बट स्टिल लाइक हिज हार्ट इज नॉट चेंजिंग So, the mood of hearing is
जो साधु है, मतलब साधु भी नहीं, जो इनोसेंट है, जो इनोसेंट है, वो लोग भगवान साधु का वाणी सुन के भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। बल्कि जो विदेशी है, वो साधु से भगवान की वाणी सुनने से उसका विद्वेष और भी ज्यादा हो जाता है। जिसका मनोभाव सत है, वो साधु का वाणी सुन के उसका भगवान के प्रति भक्ति बढ़ता है, और जो असत है, उसको भगवान के प्रति विद्वेष बढ़ जाता है। है ना?
क्लास से आपने कहा कि जो भौतिकता वाली जो मनुष्य वो अपने आप को बलवान श्रेष्ठ समझता है, तो मैं ऐसे अपने आप को सोच रही थी दो दिन से, आप जैसे उनकी कहते कि हरिनाम जाप करने से हमारे अंदर के अनर्था जाते काम क्रोध जो भी चीजें कमी मैं उसका कम कम होते जा रहा, मैं देख रही थी कि आपकी कृपा से जब तो हो रहा है पर जो चीजें है ना कम होने की वजह बढ़ती बढ़ती जा रही है बार बार के जिसका आता है बार बार
तो हरिनाम तो कर रहे हो ना, कर तो रही हो, बस छोड़ना मत। गुस्सा हो, कुछ भी हो, बल्कि नाम को मत छोड़ना, ठीक है? भक्ति का गुण, गुरुदेव चाहते हैं कि सबको भक्ति हो, सब भगवान को भक्त बन जाए। तो ये जब भक्ति देखते हैं तब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं कि मेरा जो काम, जिस काम मेरा करना चाहिए वो काम बन रहा है, ये देखकर उनका मन में आनंद होता है।
यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर बुरे कर्म करता है तो अगले जन्म में जाकर उसको उसका फल प्राप्त, लेकिन शरीर तो यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब यहीं पर दहन हो जाता है, लेकिन और आत्मा तो बुरे कर्म करने आत्मा तो बहुत शुद्ध होती है, लेकिन महाराज यदि अगले जन्म में शरीर तो नया प्राप्त होता है तो मतलब उसको दुख क्यों भोगता है, क्योंकि इसमें तो आत्मा का तो दोष ही नहीं और न शरीर का दोष है, क्योंकि शरीर तो
शरीर भौतिक शरीर भी दो प्रकार का है, एक है स्थूल शरीर जो पंचभूत से बनता है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश, और एक सूक्ष्म शरीर है जो बनता है सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार के द्वारा। मृत्यु के समय स्थूल शरीर का नाश होता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर रह जाता है। और जो कार्य जो करता है कर्म, वो सूक्ष्म शरीर में उसका प्रभाव रह जाता है, उसका फल सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। जैसे कुछ बुरा काम जो करता है उसका सूक्ष्म शरीर में या मन में वो बुरा काम का प्रभाव रह जाता है, जब कोई भला काम करता है उसका भी प्रभाव उसका मन में रह जाता है। और मृत्यु के समय स्थूल शरीर का त्याग होता है बल्कि सूक्ष्म शरीर का त्याग नहीं होता। तो ये सूक्ष्म शरीर पाप या पुण्य के कारण जैसे रूप ग्रहण करते हैं उसके अनुसार उसको अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है, समझा। और ऐसे आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, जीव ये ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है। बल्कि जब कोई भगवान का शरण लेते हैं तब ये सूक्ष्म शरीर का रूपांतर हो जाता है आत्मिक शरीर में और यह स्वरूप में, तब और मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर था वो विनष्ट हो जाता है और उसकी जगह भक्ति के कारण अपना स्वरूप को प्रकाश होता है। इसलिए भक्ति के तब क्या होता है, तो जैसे तुम कह रहे हो शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा का मतलब है वो अपने स्वरूप में है। वो स्वरूप प्राप्ति कैसे होगा, कैसे होगी, भक्ति के द्वारा। तो जैसे भक्त बनता है तब मृत्यु के पश्चात तो क्या होता है, भगवान के पास चला जाता है, ठीक है। तो आप बताओ क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, बहुत अच्छा, ठीक है। Thank you very much. Hare Krishna. All glories. अच्छा आज कीर्तन हमें ना अमर एट अ कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छे आते समय तुम लोग कीर्तन कर लो। हरे कृष्ण। आज मैं कीर्तन को मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा एक मीट कल कॉन्फ्रेंस में कॉल मीटिंग है, मतलब टेलीफोन के द्वारा हमारा मीटिंग होगा, तो उसमें हमको वो है मीटिंग होगा यद्यपि 8 बजे है, ठीक है। तो आधा घंटे के लिए मैं जा सकता हूँ न कि शुड आई गो टुडे और ओ न नो अनदर थिंग इज आई गिव टाइम टू संदीप गुप्ता एट 7 o'clock। ठीक है आज छोड़ दो, आज नहीं होगा क्योंकि एक यहां पर भी एक मीटिंग है 7 बजे, तो 7 बजे अगर मीटिंग हुआ तो 7:30 बज जाएगा, तो समय नहीं मिलेगा। कल हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। ताकि समय दीजिए तो
परम पिता श्री कृष्ण भक्त महाराज।